इशिका और अभिमन्यु राजवंश मेंशन पहुंच चुके थे। उनके आते ही अभिमान उनसे मिलना चाहता था, लेकिन रात को देर हो जाने की वजह से वे दोनों काफी थक चुके थे। अभिमान को सुबह मिलने का बोलकर इशिका और अभिमन्यु अपने कमरे में चले गए थे। वहीं सुबह भी अभिमान को उनसे मिलने का मौका नहीं मिला था। आशिका सुबह जल्द ही AR एम्पायर्स पहुंच चुकी थी। उसके आने के बाद रचित का अभिमान के पास कॉल आया था। उसे जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचना था। अभिमान AR एम्पायर पहुंचा और गाड़ी पार्क करके जल्दी से ऊपर जाने लगा। वो खुद में बड़बड़ाते हुए बोला, अमेरिकन्स कुछ ज्यादा ही पंक्चुअल होते हैं, अभी तो ठीक से ऑफिस में काम करने वाले एम्प्लॉयज भी नहीं आए। आशिका ने अपना सारा डेटा पहले ही कॉन्फिडेंशियल रखा था, यहाँ तक कि रचित की उससे बात भी डार्क वेबसाइट पर ही होती थी। उनमें से किसी के पास उसके कॉन्टैक्ट नंबर तक नहीं थे, लेकिन रचित ने ये पता लगा लिया था कि ऐश LA से आया है। अभी भी उनके लिए ऐश एक लड़का ही था। अभिमान जल्दी से अपने केबिन में पहुंचा तो राघव उसका इंतजार करते हुए वहीं पर खड़ा था। उसने तुरंत पूछा, ऐश कहाँ है? तुम लोग उसे ठीक से टाइम नहीं दे सकते थे क्या? इतनी सुबह बुलाने की क्या जरूरत थी, जबकि जानते हो आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन। उससे बात रचित ही करता था, राघव ने जवाब दिया। वो जानता था कि अभिमान को सुबह सुबह किसी से मिलना पसंद नहीं था, क्योंकि अपनी फैमिली को चेहरा देखने के बाद सुबह 1-1.5 घंटे उसका मूड खराब ही रहता था। हाँ, उससे मैं कुछ अच्छे की उम्मीद कर भी कैसे सकता हूँ? मीटिंग रूम में है क्या वे दोनों? अभिमान ने पूछा, जिस पर राघव ने जवाब में हाँ में सिर हिला गया था। अभिमान राघव के साथ तुरंत मीटिंग रूम में जाने लगा, जो 3rd फ्लोर पर बनाया हुआ था। जैसे ही अभिमान ने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, उसके सामने आशिका और रचित खड़े हुए थे। रचित आशिका से ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे वो उसे हमेशा से जानता हो। एक तो मुझे समझ नहीं आता, हर दूसरा लड़का इसका इतना जल्दी फ्रेंड बन कैसे जाता है? मैं भी ऐसे ही इसकी बातों में आ गया था। अभिमान ने सिर हिलाया और अंदर बढ़ने लगा। हेलो ऐश, अभिमान अंदर आते हुए तेज आवाज में बोला, तो रचित और आशिका उसकी तरफ पलट गए थे। आशिका ने अपनी आंखों के रंग को छुपाने के लिए हल्के भूरे रंग के लेंसेज लगा रखे थे। चेहरा ठीक से दिखाई ना दे इसीलिए ब्लैक कलर का मास्क लगा था और बालों को उसने अपनी कैप में हाइड कर रखा था। आशिका के कपड़े वैसे भी लड़कों की तरह होते थे। उसने लूज ओवरसाइज्ड बॉयज टी शर्ट और नीचे लूज पैंट पहनी हुई थी। पैरों में भी शूज थे। आशिका ने ज्यादातर अपना टाइम बंद कमरे में बिताया था, तो उसके लिए शॉपिंग भी रिहान करता था। आशिका की कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं थी, उसे कंफर्टेबल कपड़े चाहिए होते थे, तो रिहान उसके और अपने लिए लगभग एक जैसे कपड़े खरीदता था। ऐश, तुम इससे बचकर रहना, वैसे तो ये हमारा बॉस है, लेकिन 24 घंटे में से 26 घंटे इसका मूड सड़ा हुआ रहता है। हम अपने टेक लैब में काम करेंगे और गलती से भी इसके सामने नहीं आएंगे, रचित ने अभिमान की तरफ देखकर कहा। अभिमान ने उसे घूर कर देखा और चुप रहने का इशारा किया। उन्हें आशिका की पर्सनैलिटी, कपड़े वगैरह देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हैकर्स ऐसे ही कूल दिखते थे। ऊपर से उनकी पहचान किसी के सामने ना आए इसीलिए वे खुद को हाइड करके रखते थे। क्या तुमने इन्हें इनका काम बता दिया है? कॉन्ट्रैक्ट पेपर तैयार करवा लेना, जब तक हमारा काम पूरा नहीं होगा ये हमें छोड़कर जा नहीं पाएगा। दूसरी बात, ये हमारे लिए जो करने वाला है उसकी कीमत ये खुद तय करेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जितने पैसे मांगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, अभिमान ने रचित की तरफ देख कर पूछा। आशिका ने अभिमान की बात की तरफ गौर किया, तब उसने जल्दी से ना में सिर हिलाया। वो ये कहना चाहती थी कि उन्हें गलत फहमी हो गई है, वो लड़का नहीं है। ऊपर से जब से वो आई थी रचित उसे बोलने तक का मौका नहीं दे रहा था। आशिका वैसे भी कम बोलती थी, तो वो शांति से उसकी बातें सुन रही थी और उसके बॉस के आने का इंतजार कर रही थी। आशिका बोलने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि तभी रचित फिर से बीच में बोल पड़ा। मैंने कहा था ना, ये एक नंबर का सड़ू खड़ूस और अजीब आदमी है, बट डोंट वरी, मेरे होते हुए तुम्हें किसी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अरे मैं सब समझा दूंगा, फाइनली मुझे कोई अपने जैसा मिला है जिसके साथ मैं पूरा दिन बिताऊंगा और शाम को पार्टी करने के बाद हम ड्रिंक करेंगे। इतना कहकर हमेशा की तरह अपनी आदत के मुताबिक रचित ने आशिका के चेस्ट पर मारा, लेकिन ऐसा करते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई थी। वहीं आशिका भी उसे खा जाने वाली निगाहों से घूर रही थी। रचित का ये एक्सप्रेशन अभिमान और राघव को हैरान कर रहा था। वो अचानक से शॉक में चला गया था और कुछ बोल नहीं रहा था। वो आशिका की तरफ आंखें बड़ी करके देख रहा था। इसे क्या हो गया? ऐसे लगता है जैसे इसके मारने के बाद इसे कोई करंट का झटका लगा हो, अभिमान ने राघव की तरफ धीरे से पूछा। उसने भी नामे सिर हिला दिया था। रचित कभी अपनी बकबक बंद नहीं करता था। ऊपर से जिस तरह से अचानक से वो चुप हो गया था, ऐसे लग रहा था जैसे उसे कोई सदमा लग गया हो। रचित ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती मुस्कुराते हुए पूछा, तुम लड़की हो? तुमने पहले क्यों नहीं बताया? आशिका ने आईज रोल की और अपनी कैप निकाली तो उसके लंबे बाल बिखर गए थे। उसने अपना मास्क भी निकाल दिया था, जिसके बाद वे क्लियरली देख सकते थे कि आशिका कोई लड़का नहीं बल्कि लड़की है। हाँ बिल्कुल, अगर आप मुझे बोलने का मौका देते तो जरूर बताती, आशिका ने उसे घूरते हुए जवाब दिया। रचित ने एम्बेरसमेंट से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। जब उसने आशिका को चेस्ट पर मारा तब उसका हाथ उसके टच होने पर उसे एहसास हुआ कि आशिका लड़की है। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर चले जाना चाहिए, वरना मैं यहीं गड्ढा खोदकर उसमें कूदकर मर जाऊंगा, रचित जल्दी से बोला और बाहर की तरफ भागने लगा। राघव भी उसके पीछे जा रहा था। कमरे में बस आशिका और अभिमान दो ही बचे थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। आशिका को अंदाजा तक नहीं था कि वो इस वक्त जिस अभिमान राजवंश के सामने खड़ी है वो कोई और नहीं उसका पति है। वहीं अभिमान आशिका के चेहरे में एक पल के लिए खो गया था, उसका शांत और ठहरा हुआ मासूम चेहरा जो उसे व्हाइट लिली की याद दिला रहा था। शांत, मासूम, खूबसूरत और प्योर, बिल्कुल व्हाइट लिली के फूल की तरह। अभिमान को इस तरह अपनी तरफ देखा हुआ पाकर आशिका हल्का सा खांसी, जिससे अभिमान का ध्यान टूट गया था। बी कम्फर्टेबल, रचित एक बुरा इंसान नहीं है और ना ही वो लड़कियों के साथ बदतमीजी करता है। हाँ थोड़ा ज्यादा बोलता है, पर उसका इंटेंशन आपको गलत तरीके से छूना नहीं था। एक्चुअली अंदर आते ही मुझे भी यही लगा था कि आप एक लड़के हो, अभिमान ने सफाई दी। आशिका ने हाँ में सिर हिलाया। उसे पहली बार किसी के साथ मिलने पर उसके इरादे समझ भले ही ना आते हों, लेकिन रचित इतनी देर से उसे कम्फर्टेबल फील कराने के लिए कुछ ना कुछ बोले जा रहा था। बाकी ये गलत फहमी किसी को पहली बार नहीं हुई थी तो आशिका ने भी इसका ज्यादा इश्यू नहीं बनाया। मुझे लगता है कि पहले आपको अपने दोस्त से बात कर लेनी चाहिए, मैं वेट कर लूंगी, आशिका ने जवाब दिया। अभिमान ने उसकी बात पर हामी भरी और जाने लगा। उसने दरवाजे पर कदम रखा ही था कि तभी आशिका ने पीछे से तेज आवाज में कहा, अदरक वाली चाय और वेज सैंडविच। रचित के पास अब शर्मिंदा होने की बारी अभिमान की थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थी। अपनी हड़बड़ाहट और जल्दबाजी में उसने आशिका से चाय पानी तक का नहीं पूछा था, जबकि उसे वहां आए हुए काफी टाइम हो गया था। अभिमान ने आशिका की तरफ देखा और जवाब में कहा, बस अभी भिजवाता हूँ। अभिमान के जाने के बाद आशिका वहां पर बैठ गई थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, वो भी पहली बार प्रोजेक्ट के चलते किसी से पर्सनली मिल रही थी। वहीं अभिमान अपने केबिन में आया जहां राघव और रचित बैठे हुए थे। रचित को अभी भी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी।
अभिमान बिल्कुल ठीक रहता है, मैं पागल हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी अनजान इंसान के चेस्ट पर पंच कर सकता हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मुझे तो सोचकर ही रोना आ रहा है कि मैंने उसे गलत जगह पंच कर दिया, बेचारी लड़की। रचित बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था और उसका मुंह बना हुआ था। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें सबक मिल गया और तुम आगे से ऐसी हरकत नहीं करोगे। डोंट वरी, अभिमान बहुत समझदार है और उसने ऐश को बता दिया होगा, अभिमान ने सब संभाल लिया होगा, राघव ने उसे समझाते हुए कहा। इसी बीच अभिमान केबिन के अंदर आया। उसने अंदर आते ही सीधा रचित से पूछा, उसे यहां आए हुए कितनी देर हो गई? एक घंटा तो हो ही गया होगा या उससे भी ज्यादा, मुझे भी वॉचमैन का कॉल आया था, तब मैं ऑफिस पहुंचा था और उस वक्त वो आई हुई थी, रचित ने जवाब दिया। फिर उसने तुरंत अभिमान का हाथ पकड़कर आगे पूछा, अभिमान बिल्कुल ठीक रहता है, मैं पागल हूँ, मैं ऐसे कैसे किसी अनजान इंसान के चेस्ट पर पंच कर सकता हूँ? वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी? मुझे तो सोचकर ही रोना आ रहा है कि मैंने उसे गलत जगह पंच कर दिया, बेचारी लड़की। रचित बच्चों की तरह शिकायत कर रहा था और उसका मुंह बना हुआ था। चलो अच्छा है, इसी बहाने तुम्हें सबक मिल गया और तुम आगे से ऐसी हरकत नहीं करोगे। डोंट वरी, अभिमान बहुत समझदार है और उसने ऐश को बता दिया होगा, अभिमान ने सब संभाल लिया होगा, राघव ने उसे समझाते हुए कहा। इसी बीच अभिमान केबिन के अंदर आया। उसने अंदर आते ही सीधा रचित से पूछा, उसे यहां आए हुए कितनी देर हो गई? एक घंटा तो हो ही गया होगा या उससे भी ज्यादा, मुझे भी वॉचमैन का कॉल आया था, तब मैं ऑफिस पहुंचा था और उस वक्त वो आई हुई थी, रचित ने जवाब दिया। फिर उसने तुरंत अभिमान का हाथ पकड़कर आगे पूछा, प्लीज उसे बोलो ना, मैंने जानबूझकर नहीं किया, ये मेरी गंदी आदत है, आगे से आई स्वेयर किसी को पंच नहीं करूंगा, कहीं वो इस वजह से हमारे साथ काम करने से तो मना नहीं कर देगी, तुमने तो उससे अच्छे से बात की थी ना? हाँ बहुत अच्छे से बात की थी, और इतने अच्छे से कि उसे चाय या कॉफी पूछना तक भूल गया था, उसने खुद से मांगा, कुछ हॉस्पिटैलिटी स्टाफ हायर करो, आगे से कोई भी गेस्ट ऑफिस में किसी मीटिंग या और काम के लिए आए तो सबसे पहले उसकी हॉस्पिटैलिटी की जाए, अभिमान बोला। राघव ने उसकी बात पर हामी भरी। वे तीनों लड़के इस वक्त यही सोच रहे थे कि ऐश के सामने वापस कैसे जाएं। सिर्फ एक राघव ही बचा था जिसने कोई गलती नहीं की थी। अभिमान और रचित ने पपी आईज से राघव की तरफ देखा तो उसने नामे सिर हिला दिया था। मैं ठीक से समझा नहीं पाऊंगा, अभिमान तुम एआर एम्पायर के रिप्रेजेंटेटिव हो, यहाँ के सीईओ, और रचित वो तुम्हारे फील्ड से आई है, तो तुम दोनों ही जाकर बात करोगे तो बेहतर होगा, राघव उन्हें जाने के लिए समझा रहा था। वहीं काफी देर तक वे लोग वापस नहीं आए तो आशिका भी परेशान हो गई थी। न जाने अब उसे कितनी देर तक उनके वहां आने का इंतजार करना था। वहीं दूसरी तरफ राजवंश मेंशन में इशिका जल्दी उठ गई थी और वो तैयार होकर नीचे पहुंची। उसे राजवंश फैमिली से भी मिलना था। इशिका को रात को ही अभिमन्यु ने निशा के फ्लोर और कमरे का नंबर बता दिया था, तो इशिका निशा के पास ही जा रही थी। जाते वक्त अचानक वो किसी से जा टकराई। वो कोई और नहीं सिद्धांत था। वो अचानक से दूसरी तरफ से निकल कर आया था, इसी वजह से इशिका उससे टकरा गई थी। इशिका के टकराते ही उसने अजीब तरीके से अपना हाथ उसकी कमर पर रखा, मानो ये सब एक्सीडेंटली हुआ हो। इशिका तुरंत कुछ कदम दूर हो गई थी। ध्यान से, डॉक्टर मर्चेंट, इस घर में और लोग भी रहते हैं, लेकिन शायद आपकी नज़र अब तक उनके ऊपर गई नहीं है, सिद्धांत ने इशिका को अजीब नज़रों से देखते हुए कहा। बिल्कुल नहीं मिस्टर राजवंश, मेरी नज़र हर तरफ होती है। मैं देखकर चल रही थी और अचानक से आप इस तरफ से निकल कर आए और मुझसे टकरा गए। ध्यान आपका नहीं है। उम्मीद है आगे से आप देखकर चलोगे और साथ ही इस बात का ध्यान रखोगे कि सामने कौन है, इशिका ने भी सख्ती से जवाब दिया। उसकी बात सुनकर तो सिद्धांत हंस पड़ा था। वो बोला, लगता है चाचू के साथ रहते हुए आपका बिहेवियर भी काफी स्ट्रिक्ट हो गया है। आपकी इन खूबसूरत ग्रे आइज में ये गुस्सा सूट नहीं करता। इशिका का मन किया कि वो सिद्धांत का मुंह तोड़ दे। वो उसे जवाब देने वाली ही थी कि तभी अपने हाथ में उसे किसी का हाथ महसूस हुआ। वो अभिमन्यु था, जो उसके पीछे वहां तक आ गया था। अभिमन्यु को देखते ही सिद्धांत ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, चलिए अच्छा है चाचू, आप भी आ गए, इसी बहाने हम साथ में ब्रेकफास्ट कर लेंगे। बाकी लगता है कि डॉक्टर मर्चेंट राजवंश फैमिली से कुछ ज्यादा ही चिड़ी हुई है, तभी मुझे देखते ही गुस्सा हो गई, बोलते हुए उसने इशिका की तरफ देखकर आगे कहा, डोंट वरी, उस राजवंश फैमिली और इस राजवंश फैमिली में फर्क है। अगर कोई फर्क है भी तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम यहाँ अपनी दुनिया बसाने नहीं आए हैं, बस कुछ दिनों की बात है। वैसे तुम अब तक यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें ऑफिस चले जाना चाहिए, और फिर तुम दादू को शिकायत करते हो कि अभिमान तुम लोगों से तुम्हारा प्रोजेक्ट छीन रहा है। उसे ऑफिस गए हुए 2 घंटे बीत चुके हैं। काम पर ध्यान दोगे तो आगे बढ़ोगे, बजाय दूसरों की शिकायत करने के। अभिमन्यु ने उसे बातों ही बातों में अच्छा खासा सुना दिया था। अभिमन्यु ने उसे जवाब देने का भी मौका नहीं दिया और फिर इशिका का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाने लगा। इशिका ने पलटकर एक नज़र सिद्धांत की तरफ देखा, जो कि अभी भी उसे घूर रहा था। उम्मीद है कि अभी थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सब एक्सीडेंटली हुआ हो, या फिर मेरा वहम ही हो, वरना गलती से भी किसी ने इस बार मेरे और अभिमन्यु के बीच में आने की या मेरे बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं ये बर्दाश्त नहीं करने वाली हूँ, इशिका ने मन ही मन कहा। सिद्धांत ने जो भी किया इशिका ने अभी उसके बारे में अभिमन्यु को बताना सही नहीं समझा। फिलहाल वो चीज़ों को इत्तेफाक के तौर पर ले रही थी और निशा से मिलने अभिमन्यु के साथ उसके कमरे में जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ अभिमान और सिद्धांत भी अब आशिका से बात करने के लिए आ गए थे। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस मिस ऐश, चलिए आइए प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, अभिमान ने अंदर आते ही कहा। उसने आशिका को बैठने का इशारा किया। इस बार वो पूरी तरह से प्रोफेशनल होकर बात कर रहा था। अभिमान ने गहरी सांस ली और सीरियस टोन में कहा, अब जब हम एक दूसरे के लिए काम करने वाले हैं तो हमें सबसे पहले एक दूसरे के बारे में जान लेना चाहिए। मैं AR एम्पायर का CEO हूँ, अभिमान राजवंश। जैसे ही अभिमान ने अपना पूरा नाम बताया, आशिका को झटका सा लगा। अब हैरान होने की बारी उसकी थी। अभिमान राजवंश तो उस लड़के का नाम था जिसके साथ उसकी शादी रजिस्टर्ड थी, तो क्या अनजाने में वो अपने अननोन हस्बैंड के सामने पहुंच गई थी।